एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है आराधना स्तुति करने का यही समय है, यीशु से प्रार्थना करने का।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आ रहे हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा दे और उससे अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चलने सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे वचन को समझने और तेरे राह में चलने के लिए अगुवाई और मदद कर और उन्हें तेरे वचन से बहुतायत से आशीष दे। मेरे संग पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है विविधता में एकता। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़े जो यूहन्ना प्रेरित लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:20-21 पद में। यह यीशु मसीह का प्रार्थना का अंश है। यहाँ कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा कि तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसे संसार प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। प्यारो, पूरे विश्व में, दुनिया के अनेक देशों में परमेश्वर के कलीसिया के विश्वासी पाए जाते हैं। इतने विविध लोगों का समूह एक विश्वव्यापी कलीसिया परिवार के रूप में एकता कैसे बनाए रख सकता है? एकता कलीसिया के लिए क्या करती है? आइए हम आज इन्हीं बातों पर विचार करें। एकजुट होने का आह्वान मिलता है। पिछले पाठ में हमने एक खुली कलीसिया होने की आवश्यकता पर ध्यान दिया, जिसमें किसी के प्रति कोई भेदभाव ना हो। प्रेम और निष्पक्षता का ऐसा दृष्टिकोण हमें अपने वैश्विक मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाता है, जो हमें प्राप्त होती है मत्ती 28:19-20 पद में। आज हम विचार करेंगे कि कलीसिया में एकता भी हमें ऐसा करने में कैसे मदद करती है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि जब यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की कि वे उनमें और एक दूसरे के साथ एक हो, यूहन्ना 17:21 में, तो उन्होंने अपने वचन की सच्चाई में उनके पवित्रीकरण के लिए भी प्रार्थना की, जिसे हम पद 17 में पाते हैं। प्यारो, बहन एलन जी व्हाइट चर्च के लिए गवाही खंड 5:236 में लिखती हैं, एकता शक्ति है, विभाजन कमजोरी है। जब वर्तमान सत्य पर विश्वास करने वाले लोग एकजुट होते हैं तो वे एक प्रभावशाली प्रभाव डालते हैं। अनेक अंग हैं पर एक शरीर है, इसके विषय में हम रोमियो 12:4-8 में पढ़ते हैं और पहला कुरंथियो 12:12-27 में भी इसके बारे में पाते हैं। एक सादृश्य दो वस्तुओं की तुलना करके यह दर्शाता है कि वे कैसे समान हैं। कलीसिया में एकता की अवधारणा को समझने में हमारी मदद करने के लिए पौलुस रोमियो 12:4-8 और पहला कुरंथियो 12:12-27 में मनुष्य की शरीर सादृश्य प्रयोग करता है। शरीर में बहुत से अंग हैं पर सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। पौलुस की तुलना हमें एकता के बारे में निम्नलिखित बातें सिखाती है। पहला, चर्च को अपने सभी सदस्यों की जरूरत है। हमें अलग थलग नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दूसरा, हर सदस्य का काम महत्वपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कलीसिया के लिए क्या काम करते हैं, आप जो भी करते हैं वह कलीसिया की एकता के लिए जरूरी है। और तीसरा, परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अपने कलीसिया परिवार के लिए उपयोग करने हेतु एक उपहार देता है, इसलिए लोगों को उस उपहार से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है जो उनके पास नहीं है। परमेश्वर ने हमें जो उपहार दिया है वह भले ही बहुत ज़्यादा दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी यह उपयोगी है और हमें इसका उपयोग प्रसन्नतापूर्वक और स्वेच्छा से करना चाहिए। इन अंतिम दिनों में बहन एलन व्हाइट कहती है, मसीह और एक दूसरे के साथ एकता ही हमारा एकमात्र सुरक्षा है। सभी सारी कार्य मुखिया पर निर्भर करते हैं। कलीसिया का मुखिया कौन है? इफिसियो 4:15 बताती है कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। जब मसीह हमारे जीवन में प्रथम स्थान रखता है तो कलीसिया में एकता होगी। मसीह में हम एक हैं। प्यारो, इसे हम गलातियों 3:28 में पढ़ते हैं। इसमें पौलुस कहता है 28 पद में, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्योंकि कलीसिया में सभी सद्गुण मसीही के नए जीवन का परिणाम है। इसलिए मसीह में कलीसिया की एकता बनाने के लिए हम सभी को प्रतिदिन नया जन्म लेना चाहिए। हमें महानता के बजाय सच्ची अच्छाई की तलाश करनी चाहिए। जो लोग मसीह का मन रखते हैं वे स्वयं के बारे में विनम्र दृष्टिकोण रखेंगे। वे कलीसिया की पवित्रता और समृद्धि के लिए परिश्रम करेंगे और अपने भाइयों के बीच मतभेद पैदा करने के बजाय अपने हितों और इच्छाओं का त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। आप एक मन होने की सलाह को कैसे समझते हैं जो दूसरा कुरिन्थियों 13:11 में मिलता है? क्या इसका मतलब यह है कि हम सभी को एक जैसा सोचना और काम करना चाहिए? क्यों या क्यों नहीं, आगे हम समझेंगे इसके विषय में। एक ही भावना रखो, बाइबल कहती है, एक दूसरे से सहमत रहो, सद्भाव से रहो, एक ही दिशा में सोचो। ये कुछ अन्य अच्छे वाक्यांश हैं जो यह बताने के लिए हैं कि पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखी अपनी अंतिम पत्री में क्या सोचा था। एकता के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वार्थ और बुरी अनुमानों पर विजय पा सकेंगे और उसके द्वारा विजेता से भी बढ़कर बन सकेंगे जिसने आपसे प्रेम किया और आपके लिए स्वयं को दे दिया, वह है प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया की एकता पौलुस की प्राथमिकता थी। एकता के लिए आध्यात्मिक उपहार हमें दी गई है। इसके विषय में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12:4-6 में और 28-31 में तथा इफिसियों 4:11-16 में भी और रोमियों 12:4-8 में भी। विविधता में एकता सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य कर सकती है। कहता है 1 कुरिन्थियों 12:4-6 और रोमियों 12:4-8, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह के शरीर के प्रत्येक सदस्य में आध्यात्मिक वरदान अलग अलग होते हैं, परंतु उसकी शक्ति ऐसे वरदानों को पूरक बनाकर और उनके आदर्शों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें एकीकृत करके एकता का चमत्कार कर सकती है। बेल की कई शाखाएं होती हैं, लेकिन हालांकि सभी शाखाएं अलग अलग होती हैं, वे झगड़ा नहीं करती। विविधता में एकता है। सभी शाखाएं एक स्रोत से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। यह मसीह के अनुयायियों के बीच मौजूद एकता का एक उदाहरण है। उनके अलग अलग कामों में उन सभी का एक ही मुखिया है, एक ही आत्मा अलग अलग तरीकों से उनके माध्यम से काम करती है। सामंजस्यपूर्ण कार्य होता है, हालांकि उपहार अलग अलग होते हैं। 1 कुरिन्थियों 12 में हम यह पाते हैं। आप इससे देखेंगे कि वह व्यक्ति जो वास्तव में मसीह के साथ एक है वह कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेगा जैसे कि वह स्वयं में पूर्ण हो। अपने आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करते समय हमें इन लक्ष्यों को ध्यान में रखने चाहिए जो हमें मिलते हैं इफिसियों 4:11-13 में, विशेषकर 12-13 पदों में। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, 12 पद में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 13 पद, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डिलडोल तक ना बढ़ जाएं। सुसज्जित करना, पूर्ण बनना या तैयार करना शब्द का अनुवाद मत्ती 4:21 में जालों को ठीक करने के संदर्भ में और गलातियों 6:1 में किसी गलती के आगे झुके हुए व्यक्ति को पुनर्स्थापित करने के संदर्भ में किया गया है। इस प्रकार आध्यात्मिक उपहार संतों को सुधारने और उन्हें एकजुट करने के उद्देश्य से थे। जैसा कि संदर्भ से पता चलता है, पूर्ण बनाने में कलीसिया की एक व्यवस्थित सेवकाय और शासन शामिल है। पौलुस ने बार बार एकता के बारे में लिखा। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पाठक इस विषय के महत्व को समझे। अगर कलीसिया के सदस्य बटे हुए हो, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हों, स्वार्थी महत्वाकांक्षाएं रखते हों या एक दूसरे के विरोध लड़ते हों, तो वह मजबूत कैसे हो सकती है? मरकुस 3:24-25, 1 कुरिन्थियों 1:10 10 में पौलुस क्या निवेदन करता है, तुम्हारे बीच कोई फूट ना हो। पौलुस की यह दलील उस रिपोर्ट का परिणाम है जिसमें बताया गया था कि कुरिन्थ की कलीसिया में कलह चल रही थी। पद 11 पद 12 के अनुसार इस कलह में कलीसिया के विभिन्न सदस्य किसी न किसी शिक्षक का समर्थन या अनुसरण कर रहे थे। इस प्रकार कुरिन्थियों ने मसीह, जो कि एक महान शिक्षक है, के बजाय मानव शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया, परिणाम फूट। तब उन्हें यह पुनः सीखने की आवश्यकता थी कि मसीह ही वह केंद्र है जिसकी ओर सभी को आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि हम केंद्र के जितने निकट पहुंचेंगे उतना ही हम भावनाओं, सहानुभूति और प्रेम में एक साथ आएंगे और यीशु के चरित्र और स्वरूप में विकसित होंगे। पहली सदी के यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क बताते हैं कि कैसे सिलूरस ने अपने मृत्युशैया पर अपने बच्चों को तीरों का एक बंडल दिया और उनसे कहा कि वे बंडल में एक इकाई के रूप में तीरों को तोड़ने का प्रयास करें। जब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर पाया तो उसने प्रत्येक तीर को अलग अलग निकाला और आसानी से एक एक करके सभी तीरों को तोड़ दिया। इस प्रकार उसने उन्हें सिखाया कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो वे मजबूत रहेंगे, लेकिन अगर वे विभाजित हो गए तो वे कमजोर हो जाएंगे। मसीह ऐसी एकता का हमारा आदर्श है। उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने की नहीं, बल्कि उस पिता की इच्छा पूरी करने की इच्छा की जिसने उन्हें भेजा था। यह हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6:38 पद में। अगर यही सचमुच हर कलीसिया परिवार के सदस्य का लक्ष्य होता तो एकता कायम रहती। एकता से पता चलता है कि परमेश्वर ने पुत्र को भेजा। यह हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17:12 में और 20-23 में भी। यीशु चाहते थे कि संसार को पता चले कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा। वह चाहते थे कि लोग उन्हें परमेश्वर का पुत्र, मसीहा और मसीह के रूप में स्वीकार करें। यूहन्ना 17:3। यदि वे मसीह को परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र मानकर ग्रहण करेंगे तो वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। ऐसा होने के लिए मसीह के अनुयायियों को संसार के सामने प्रेम में एकता का तस्वीर पेश करनी चाहिए, जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17:20-23 में। हम पिता और पुत्र के बीच विद्यमान पूर्ण एकता में ईसाई एकता का आदर्श पाते हैं यूहन्ना 17:21। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उनमें एक हो सकते हैं। यीशु की प्रार्थना एकता को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में रखती है। सबसे पहले हम में से प्रत्येक को परमेश्वर के साथ एक होना होगा, फिर परिणाम स्वरूप हम एक कलीसिया परिवार के रूप में एक हो जाएंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसा 10 आज्ञाओं के साथ है। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ हमारे संबंध पर जोर देती हैं। जब हमारा संबंध वैसा होगा जैसा होना चाहिए परमेश्वर के साथ, तब दूसरों के साथ हमारे संबंध अंतिम 6 आज्ञाएं वैसे ही होंगे जैसे होने चाहिए। मसीह के साथ हमारा व्यक्तिगत मिलन और विश्वासियों के बीच एकता अभी भी इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि उन्हें पिता ने भेजा। जो कोई मसीह का अनुसरण करने का दावा करता है वह अपने आप को कम और दूसरों को अधिक महत्व दे, एक साथ आगे बढ़ो, यह सलाह दिया जाता है। हर कोई मसीह की प्रार्थना का उत्तर देने का प्रयास करे कि वे सभी एक हो जाएं, जैसे कि तू पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। भजन संहिता 133 में दाऊद भाइयों में सुंदर एकता का वर्णन करता है। सत्य में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गवाही एक होनी चाहिए। तुम्हारे सभी छोटे मोटे मतभेद जो भाइयों में लड़ाकू भावना जगाते हैं, हमारे सामने मौजूद बड़े और भयावह मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए शैतान की चालें हैं, कहती है बहन एलन जी वाइट, चयनित संदेश पुस्तक 3:20 में। आगे वह कहती हैं, परमेश्वर के लोगों के बीच सच्ची शांति तब आएगी जब एकजुट उत्साह और सच्ची प्रार्थना के माध्यम से बड़े पैमाने पर मौजूद झूठी शांति भंग हो जाएगी। अब ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। अब समय है अपने सैनिक गुणों को प्रकट करने का। प्रभु के लोगों को परमेश्वर सत्य और धार्मिकता के शत्रुओं के विरुद्ध एकजुट मोर्चा बनाने दो। प्यारो, विविधताओं के बावजूद एकता में बंधी कलीसिया का होना ईश्वर का एक चमत्कार है। यह चमत्कार तभी संभव है जब मसीह हमारे हृदयों में वास करें। तभी हम पहला मसीह में एक हो सकते हैं, दूसरा कलीसिया की एकता का निर्माण कर सकते हैं, तीसरा अपने आध्यात्मिक वरदानों का उपयोग ईश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं, और चौथा एक कलीसिया के रूप में विकसित हो सकते हैं और सभी को यह प्रकट कर सकते हैं कि पिता ने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। तो चलिए हम इस सलाह को ग्रहण करें और पवित्र आत्मा को हमारे मन हृदय में आने दे, ताकि वह परमेश्वर का एकता हम में लाए, जो प्रेम और सच्चाई में एकता लाता है, और हम प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाए, एक दूसरे के साथ प्रेम में एक हो जाए, जिससे हम परमेश्वर के ज्योति को, सच्चे ज्योति को चमका सके और दुनिया के दूसरे लोग भी यह जाने कि हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें एक साथ आने के लिए तेरा पवित्र आत्मा का वरदान देने का प्रतिज्ञा किया है। यह प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना है कि हम तुझ में और एक दूसरे से विश्वास में एक बने रहें। तेरा आशीष हो पिता कि हम तेरे सच्चाई में बंधे रहे और तुझ में एक रहे, तेरे प्रेम में बढ़े। मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें आशीष दे और तेरे प्रेम में, तेरे एकता में आने के लिए सबों को आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अल्लाह और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।